अध्याय नौवां। सुबह के लगभग 5 बजे थे और सूर्योदय हो ही रहा था। न जानते हुए कि हमें कहाँ जाना है या क्या करना है, मैं गैरी के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन से उतरे और ट्रेन में चढ़ने की धक्का मुक्की करने वाले सैकड़ों लोगों से प्लेटफॉर्म ठसाठस भरा था। इन सब के बीच एक अजीब सी शांति मेरे हृदय में उमड़ उठी। ये उसी भावना के समान थी जो मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रार्थना करते समय अनुभव हुई थी कि मेरे जीवन में अब कुछ विशेष घटने वाला था। भीड़ में खुशी और उमंग दिखाई पड़ रही थी। गैरी और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और उस फूल का स्मरण करते हुए जिसने यूरोप में हमारे मार्ग का निर्धारण किया था, कुछ समय के लिए वहां ठहरने का निर्णय किया। थोड़ी ही देर में स्टेशन शांत हो गया। मैंने कुछ दूरी पर घेरा बनाकर बैठे 10-12 साधुओं को देखा। मैंने गैरी को रुकने का संकेत दिया और उनके पास गया। क्षमा कीजिए, मैंने पूछा, ये कौन सा स्थान है? बिना कुछ बोले एक साधु ने मेरी आंखों में ऐसे घूरा मानो वो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। खड़े होते हुए उसने चुप्पी तोड़ी, ये मथुरा है, श्रीकृष्ण का जन्मस्थान, और आज जन्माष्टमी है, श्रीकृष्ण का जन्मदिवस। उनके निमंत्रण पर गैरी और मैं उस स्थान पर गए जहां जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा था। जब हम मुख्य द्वार पर पहुंचे तो एक वृद्ध साधु मेरी ओर मुड़े, क्या तुम श्रीकृष्ण के विषय में जानते हो? कुछ अधिक नहीं, मैंने स्वीकार किया। मुझे केवल इतना मालूम था कि वे मेरे चित्र में प्रदर्शित नीले लड़के थे और उनका नाम उस मंत्र में आया था जो गंगा मैया ने मुझे दिया था। साथ में एक कथा जिसमें उन्होंने बचपन में मिट्टी की मटकी फोड़कर बंदरों को माखन खिलाया था, क्या आप कुछ और बता सकते हैं? उनका चेहरा उत्साह से खिल उठा और बार बार अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, श्रीकृष्ण हमारे भगवान का नाम है जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। वे अजन्मे, अमर, अनादि और अनंत हैं। भगवान अपने परमधाम में रहते हैं और समूचे मानव इतिहास में वे अनेक बार अनेक रूपों में अपनी स्वेच्छा से अवतरित हुए हैं। ये सब वे हमें कष्टों से मुक्त करने और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। साधु ने तीर्थयात्रियों से भले एक विशाल आंगन की ओर संकेत किया। 5000 वर्ष पूर्व वे इसी स्थान पर प्रकट हुए थे। आओ इस महोत्सव में हमारे साथ भाग लो। मैंने जो अंदर देखा उससे मेरी उत्सुकता जाग उठी। एक विशाल मस्जिद श्रीकृष्ण के छोटे मंदिर के ऊपर खड़ी थी। क्या इस बात का कोई कारण है कि श्रीकृष्ण के जन्मस्थल पर एक मस्जिद है? मैंने अपने मार्गदर्शक से पूछा। पहले यहाँ आदि केशव मंदिर था जो विश्व के सर्वाधिक महान स्मारकों में से एक था, किंतु 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने उसे नष्ट कर उसके स्थान पर यह मस्जिद बना दी। क्यों? गैरी ने पूछा। साधु ने अपने कंधे झटक कर अपनी निस्सहायता व्यक्त की। शायद ऐसा करके वो अपने धर्म की श्रेष्ठता और अधीन हिंदुओं के ऊपर अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। एक आशा भरी मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आई। किंतु यहाँ मस्जिद के निकट ही श्रीकृष्ण का एक भव्य मंदिर बनाने की योजना चल रही है, शीघ्र ही वो बन जाएगा। कुछ भी हो, यह स्थान अत्यंत पवित्र है। भले ही लोग कुछ भी करें, चलो अंदर चलकर महोत्सव में भाग लेते हैं। आंगन में चारों ओर आनंद ही आनंद था। हजारों श्रद्धालु गर्भगृह में श्रीकृष्ण का दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध थे और उससे भी कहीं विशाल जनसमुदाय ऊपर खड़ा था। हर दिशा में लोग आनंद मना रहे थे। सैकड़ों लोग ढोलक, बांसुरी और करतालों के संगीत पर कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। वरिष्ठ विद्वान अपनी गद्दियों पर बैठे अपने अनुयायियों को प्रवचन दे रहे थे। चमकीले कपड़ों, फूल मालाओं और चित्रित पृष्ठभूमि वाले सुसज्जित मंच पर तड़कीली भड़कीली पोशाक पहने अभिनेता श्रीकृष्ण जन्मलीला की झांकी दिखा रहे थे। इसी बीच अनेक पंडित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में घी की आहुति दे रहे थे। हंसते गाते भक्त एक दूसरे के गुलाल फेंकते हुए इधर उधर घूम रहे थे। हमने माथे पर तिलक लगाए हिंदुओं और परंपरागत टोपी पहने दाढ़ी वाले मुसलमानों को एक दूसरे के साथ हंसते गाते महोत्सव में भाग लेते देखा। बैरागी भी एक किनारे पर बैठे अपनी मालाओं पर धीरे धीरे अंगुलियां फेरते हुए उत्सव मना रहे थे। समारोह, प्रवचनों, कीर्तन और वार्तालापों में मैंने अनेक बार भक्तों को वृंदावन शब्द कहते सुना। मैं समझ पा रहा था कि वृंदावन नामक ये स्थान उन्हें कितना प्रिय है। हमने पूरा दिन जन्माष्टमी के अद्भुत दृश्यों और कीर्तनों में लीन रहकर बताया। जैसे जैसे मध्यरात्रि निकट आने लगी, श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ यमुना नदी के निकट के गलियों से होती हुई तट पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर में एकत्रित होने लगी। शास्त्रों के अनुसार श्रीकृष्ण ने मध्यरात्रि के समय मथुरा में जन्म लिया था। अब सभी उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि मंदिर हजारों लोगों से खचाखच भरा था, हजारों और लोगों की भीड़ मंदिर के दरवाजे से जैसे तैसे प्रवेश कर रही थी। पुलिस डंडों से भीड़ को नियंत्रित करने का व्यर्थ प्रयास कर रही थी। न तो गैरी ने और न ही मैंने कभी इतनी विशाल भीड़ देखी थी। अच्छी तरह देखने के लिए हम मंदिर के प्रांगण में स्थित दो खंभों पर चढ़ गए और वहां से उस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। विशाल जनसमुदाय मध्यरात्रि की प्रतीक्षा में उमंग से भरा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, श्रीकृष्ण का दर्शन देने के लिए गर्भगृह के दरवाजे खुल गए। हर्ष की तुमुल ध्वनि एक लहर के समान उमड़ पड़ी। उल्लसित भक्तों की भीड़ धक्के मुक्कों की कोई परवाह नहीं कर रही थी। बूढ़े और जवान, स्त्री और पुरुष, धनी और निर्धन, सभी एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना में लीन थे। भक्ति से उनकी आंखें दमक रही थीं। छोटे घेरों में बैठे ग्रामवासी अपने लोकगीत गा रहे थे और बाकी सभी हंसते रोते नाचते हुए जोर से श्रीकृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे। खम्भों से सटे गैरी और मेरे लिए इन श्रद्धालुओं की आतुरता अचरज भरी थी। प्रातः लगभग 3 बजे हमें सोने के लिए यमुना के तट पर एक स्थान मिला। वो विश्राम घाट था। हमें बताया गया कि एक बार इसी स्थान पर श्रीकृष्ण ने स्वयं विश्राम किया था। अगले दिन जब हम मथुरा की गलियों में घूम रहे थे तो अच्छे वस्त्र पहने 4 युवक एक चाय की दुकान से भागकर हमारे पास आए और हमारा अभिनंदन किया। अपने शहर में आप विदेशियों को देख के हमें बहुत गर्व हो रहा है, उनके प्रमुख ने कहा। क्या आप हमारे आदरणीय गुरुजी से मिलना चाहेंगे? अवश्य, गैरी ने उत्तर दिया। हमें उनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी। चलो मित्रों, ये कहकर वो हमें चाय की दुकान में ले गया। बहुत समय पहले हमारे गुरुजी ने परम सत्य की प्राप्ति के लिए इस जगत के सुखों को त्याग दिया था। गुरुजी ऐसे विद्वान हैं कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। हम इस क्षेत्र में उनके सैकड़ों शिष्यों में से हैं। आप यहीं ठहरे तो मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। कुछ मिनटों पश्चात गुरुजी आए। वे लगभग 40 वर्ष की अवस्था के थे और उनका सिर घुटा था। उनके हाव भाव नपे तुले थे। परिष्कृत अंग्रेजी बोलते हुए उन्होंने मधुर लहजे में हमें शास्त्रों में वर्णित मथुरा नगर का महात्म्य कह सुनाया। जब उन्होंने हमें अपने मंदिर में रात बिताने का न्योता दिया तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हम उनके पीछे पीछे एक छोटे शिव मंदिर में गए। मंदिर के बीच में शिवलिंग था और उसके पीछे लोहे का एक त्रिशूल यज्ञवेदी की भस्म में सीधा गड़ा था। स्वामी जी ने हमारी बहुत अच्छी देखभाल की और हमें शाकाहारी भोजन देते हुए हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। जब रात हुई तो स्वामी जी ने गैरी को भूमि पर सोने के लिए एक चटाई दी और मुझे अपने साथ लकड़ी के पलंग पर सोने के लिए आमंत्रित किया। उन आदरणीय गुरु के साथ समान स्तर पर सोना एक ऐसा सम्मान था जिसके लिए मैं योग्य नहीं था। मैं सोचने लगा कि उनके कितने शिष्य उस रात मेरी स्थिति पर होने के लिए कुछ भी देने को तैयार होते। स्वामी जी मेरे साथ लेट गए। फिर रात की खामोशी में मैंने अचानक उनके हाथों को मेरे शरीर की मालिश करते हुए अनुभव किया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने पूछा। ये अतिथियों की आवभगत करने का हमारा रिवाज है। मैं कृतघ्न नहीं होना चाहता था, इसलिए चुप रहा। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे शरीर के गुप्तांगों की ओर खिसकने लगे। मेरा मन आशंकाओं के भंवर में चकराने लगा। न समझते हुए कि क्या करूं, मैंने उसके हाथ झटक दिए। कुछ मिनटों पश्चात उसके हाथ फिर से नीचे रेंगने लगे। मैंने फिर से उन्हें झटक दिया। कृपया मेरी मालिश मत कीजिए, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। वो मेरे कानों में फुसफुसाया, मैं तुम्हें भगवान का आशीर्वाद दे रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। मैं केवल भगवान का माध्यम हूं, तुम्हें प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। कमरा अंधकार से भरा और गर्म था। वेदना से भरा मैं वहां लेटा रहा। यदि मैं उसे निराश कर दूंगा तो क्या होगा? वो शायद मुझे दंड देगा। मुझे वासुदेव और उसके भ्रष्ट गुरु वाला दुखद अनुभव स्मरण हो आया। हो सकता है इसके पास भी योग सिद्धियां हो। जब भी उस व्यक्ति ने मुझे टटोलने का प्रयास किया मैंने उसके हाथों को झटक दिया। क्या वास्तव में यह सत्कार की पद्धति है? प्रत्येक विफल प्रयत्न के पश्चात उसकी जबरदस्ती बढ़ती गई। अब वो उत्तेजना से हांफ रहा था तथा और अधिक बल प्रयोग करने लगा। वो न सुनने के लिए तैयार नहीं था। क्रोधित हो मैं अपने मुक्कों से उसे पीटने ही वाला था, किंतु मैंने स्वयं को रोक लिया। मैं एक स्वामी से कैसे लड़ सकता हूँ? क्या साधु को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? और यदि मैं उसे मारूंगा तो उसके शिष्य मेरा क्या हशर करेंगे? मानसून की उमस में पसीने से लथपथ मैं वहां लेटा उस भयावह परिस्थिति से बचने के लिए प्रार्थना करने लगा। फिर मैंने ठान ली। उसे धकेलते हुए मैं उछलकर खड़ा हो गया। क्रोध से आग बबूला हो उसने कसकर मेरा आलिंगन कर लिया, लेकिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर छूट निकला और उसे धकेलकर भाग खड़ा हुआ। इस पूरे प्रसंग के दौरान गैरी चैन से सो रहा था। देर रात हो चुकी थी। मैं भागकर सुनसान गली में पहुंचा। सुरक्षित दूरी से मैं एक खुले दरवाजे से स्वामी पर निगरानी रख रहा था, ये निश्चित करते हुए कि वो ऐसा सत्कार गैरी के साथ न करे। मैं एक प्रहरी कुत्ते के समान पहरा देता रहा, आवश्यकता पड़ने पर गैरी की सहायता के लिए तैयार। रात की परछाइयों में खड़ा और मानसून की बारिश से भीगता हुआ मैं सुबह होने तक जगा रहा। प्रत्येक आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ लोग सच्चे होते हैं और कुछ झूठे। साधुत्व किसी की उपाधि, वेश, केशन्यास या रहने के स्थान से निर्धारित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर इस व्यक्ति के पास स्वामी की उपाधि थी, साधु का वेश था और सिर घुटा था, जो ये दर्शाता था कि उसने सांसारिक भोगों को त्याग दिया था। वो शास्त्रों का विद्वान, एक मंदिर का प्रमुख पुजारी और ऐसे अनेक शिष्यों का गुरु था जो उसकी पूजा करते थे। फिर भी उसने अपनी कामवासना की पूर्ति के लिए मेरा शोषण करने का प्रयास किया। सच्चे साधुत्व की पहचान व्यक्ति के आचरण से होती है। अपने आध्यात्मिक पद का उपयोग कर मासूम लोगों का शोषण करना एक भयंकर अन्याय है। मैं प्रार्थना करने लगा कि इस प्रसंग से मेरे मन में सच्चे भक्तों के प्रति संशय उत्पन्न न हो। गैरी बिना किसी दुर्घटना के रात भर शांति से सोता रहा। उस तूफान से अनभिज्ञ जो शिव मंदिर के भीतर और बाहर उत्पात मचा रहा था। सुबह होने पर गैरी रात को घटी उस घटना का विवरण सुनकर अचंभित रह गया। कामवासना से पीड़ित गुरु, हमारी आदर्शवादी मासूमियत को फिर से असली संसार ने चुनौती दी थी। भले ही हम मथुरा में फंस गए थे, हम हिमालय में अमरनाथ की यात्रा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, किंतु उस दिन प्रातःकाल जब मैं यमुना नदी में स्नान कर रहा था, मुझे वृंदावन जाने की प्रबल इच्छा हुई। न जाने क्यों मैं अकेले ही वृंदावन जाने को लालायित था। गैरी मुझे अगले दिन वृंदावन में मिलने के लिए मान गया, जहां हम अपनी अमरनाथ की भावी यात्रा की योजना बनाने वाले थे। यहां पर 9वां अध्याय और 3रा खंड इस पुस्तक का समाप्त होता है।